समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार मनोज। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 21st of January. So let's begin with the headlines first, Manoj. Donald Trump has been sworn in as the 47th President of the United States, taking the oath of office for his second term. Chief Justice John Roberts administered the oath at the Capitol Rotunda in Washington, D.C. last night. J.D. Vance took the oath as Vice President, administered by Justice Brett Kavanaugh. At 40, Vance becomes the 50th Vice President and the third youngest in the U.S. history. In his inaugural address, President Trump declared a national energy emergency to help lower prices, a key campaign promise. He asserted that the inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices. The new president also pledged to direct his cabinet to use their vast powers to reduce the cost of goods. He vowed to put America first as he marked the beginning of a new chapter for the country, declaring that the golden age of America begins right now under his leadership, highlighting several executive actions he plans to take, including rolling back clean energy initiatives. President Trump pledged that he would end the Green New Deal and revoke the electric vehicle mandate, vowing to immediately overhaul the trade system to protect American workers and families. The president also stated that they will tariff and tax foreign countries to enrich their citizens. He added that this will bring in massive amounts of money to the country's treasury from foreign sources. President Trump vowed to end the weaponization of the Justice Department, asserting that the scales of justice will be rebalanced and that the vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and government will end. As part of his immediate actions, he also announced plans to change the name of Gulf of Mexico to Gulf of America. External Affairs Minister S. Jaishankar represented India at the event, which was attended by several foreign leaders. Notable business leaders were also present at the ceremony.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के बहुत से नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे एक बार फिर उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों को लाभ हो और विश्व के बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री ट्रंप को नए जनादेश के साथ कार्यभार संभालने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें दृढ़ विश्वास है दोनों देशों के बीच मित्रता और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने में सहयोग बढ़ेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे एक बार फिर मिलकर काम करेंगे और अमरीका इसराइल के संबंधों को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने इजरायली बंधकों को छुड़ाने के प्रयासों में सहायता के लिए श्री ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने श्री ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि अमेरिका जर्मनी का सबसे करीबी सहयोगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने कहा कि ब्राजील और अमेरिका के बीच सहयोग ऐतिहासिक है और ये एक दूसरे के सम्मान और मित्रता पर आधारित है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने श्री ट्रंप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका संगठन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मिलकर काम करना चाहता है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टो मेट्सोला ने अमरीकी जनता को नए अध्याय की शुरुआत पर अपनी शुभकामनाएं दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा निर्णायक रहे हैं और उन्होंने शक्ति के माध्यम से शांति की जिस नीति की घोषणा की है वो अमरीकी नेतृत्व को मजबूती और न्यायपूर्ण तरीके से दीर्घकालिक शांति हासिल करने का अवसर प्रदान करती है।
Senior officials from the External Affairs Ministry and the Government of Uttar Pradesh held an interactive session with foreign journalists to discuss various aspects of the ongoing Mahakumbh 2025. The program took place in New Delhi yesterday. During the interaction, representatives from the Uttar Pradesh government emphasized that the Mahakumbh 2025 is set to surpass other major global events in terms of attendance. While the Rio Carnival in Brazil attracts 70 lakh people, the Hajj pilgrimage draws 25 lakh and Germany's Oktoberfest hosts 72 lakh. The Mahakumbh 2025 is expected to witness an unprecedented 45 crore attendees. This underscores the unparalleled scale and global significance of the Mahakumbh as one of the largest gatherings in the world. According to the government's estimate, more than 45 crore devotees are expected to attend the Mahakumbh 2025, including around 15 lakh foreign tourists. The Mahakumbh, which began on the 13th of this month at Prayagraj, will continue till 26th of next month. Mahakumbh 2025 is said to deliver a significant economic boost, contributing up to 2 lakh crore rupees to India's economy. The GDP of Uttar Pradesh is also expected to grow by over 1%.
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन होगा। इसमें संविधान लागू होने के 75 वर्षों और जन भागीदारी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित रहेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ इंडोनेशिया का 160 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्यों का बैंड दस्ता भी भाग लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर केंद्रित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की 31 झांकियां भी कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। ये भी कहा गया है कि परेड में शामिल 2 झांकियों में संविधान के 75 वर्षों की गाथा को प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विशेष संदेश पट्टिका वाले गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे।
A total of 699 candidates have been left in the fray for 70 seats after withdrawal of candidature for the Delhi Assembly elections. The last day to withdraw nominations was yesterday. The highest number of candidates are in New Delhi Assembly constituency, while the lowest number of candidates are in Patel Nagar and Kasturba Nagar seats. As per the Chief Electoral Officer, a total of 487 nominations have been rejected out of 1,522 nominations. Voting for Delhi Assembly elections will be held on 5th of February and the counting will take place on the 8th of February.
जनजातीय कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का केंद्र बिंदु अभियान के अंतर्गत 6 मुख्य क्षेत्रों पर होगा, जिसमें ग्रामीण विकास, आवास और सड़क, छात्रावास, स्कूल, पेयजल, आंगनवाड़ियों का संचालन और बहुउद्देशीय केंद्रों का संचालन शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य उन जिलों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और प्रगति को सुगम बनाना है जिनमें सुधार की अत्यधिक संभावना है। मिशन के उद्देश्यों को तेजी से कैसे पूरा किया जाए इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप अंतिम छोर तक पहुंचे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 राज्यों के कुल 88 जिले चर्चा में शामिल होंगे और अंतर्दृष्टि साझा करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री जनमन के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार होगी।
At the Tata Steel Chess Tournament in Wijkansee, Netherlands, Grandmaster Ramesh Babu Pragyananda delivered a stellar performance defeating India's number one, Arjun Erigaisi, with the white pieces in round 3. The victory catapulted him to the top of the points table, tied with Uzbekistan's Norirbek Abdusarov at 2.5 points each. Meanwhile, Indian star Gukesh Domaraju drew with world number 2 Fabiano Caruana, keeping his unbeaten streak alive after becoming the youngest world champion last month. In another match, Leon Luke Mendonca bounced back from the 2 defeats to draw with Pentala Harikrishna. In today's round 4 fixtures, Gukesh faces Alexey Sarna of Russia, Pragyananda takes on Mendonca, and Arjun battles Vladimir Fedosiev. Switching to Melbourne, the Australian Open tennis quarterfinal action heats up. In the mixed doubles, Rohan Bopanna and Shuai Zhang faced the Australian duo of John Pierce and Olivia Gadecki at Showcourt Arena. In the men's singles, Novak Djokovic takes on Carlos Alcaraz, while Alexander Zverev squares off against America's Tommy Paul. Over in the women's singles, Aryna Sabalenka meets Anastasia Pavlyuchenkova. Finally, in Kuala Lumpur, defending champions India gear up for a Group A showdown against host Malaysia in the ICC Under-19 Women's T20 World Cup. The match starts at noon at BioMass Oval Stadium. Manik Sharma, Akashvani News, Delhi.
और अब हॉकी से जुड़ी कुछ खबरें।
रांची में हुए महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली एसजी पाइपर को 5-1 से हराया। वहीं राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए पुरुष वर्ग के मैच में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने शराची रार बंगाल टाइगर्स को 2-1 से मात दी। हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे महिला वर्ग में ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब, वहीं पुरुष वर्ग में यूपी रुद्राज और टीम गुनासिका के बीच मुकाबला 8:15 बजे राउरकेला में होगा। आकाशवाणी के लिए मैं सोनाली।
और अब रुख करते हैं महानगरों के समाचारों का।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इज द फर्स्ट IIT विच ऑफर्स अ डेडिकेटेड एडमिशन कैटेगरी फॉर एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स पर्सन्स। दिस इनिशिएटिव रिकॉग्नाइजेज एक्सीलेंस एंड एनकरेजेज स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन अलोंग साइड देयर स्पोर्ट्स करियर्स अंडर द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन SEA कैटेगरी। IIT मद्रास admits 5 national athletes under its pioneering for the academic year 2024-25. Speaking on this, Professor Mahesh Panchagnula, head of the Center of Excellence in Sports Science and Analytics, said the SEA program ensures no compromise on academic merit while rewarding sports excellence. It is a step towards making sports mainstream and leveraging technology to enhance athletes' performance. To enrich the scientific understanding of government and private school teachers of the state, the Tamil Nadu State Council for Science and Technology organized a training program. In this 5-day in-service training for imparting the applicable scientific knowledge to science teachers, this will equip and update them on the recent trends and technologies associated with the scientific environment. It will enhance science teachers' ability to teach better and provide opportunities for collaboration and professional networking among educators. And now from Newsroom Delhi, over to Manoj.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का कल आखिरी दिन था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 36 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय को कुल 1522 नामांकन प्राप्त हुए थे, इनमें से 487 नामांकनों को रद्द कर दिया गया है। सभी दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक शहर में रोड शो, रैलियां, जनसभाएं और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में विश्वासनगर और कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव प्रचार को गति देने के लिए अपने सभी पार्टी उम्मीदवारों के साथ संगठनात्मक बैठक की। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर प्रचार किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने प्रिंट मीडिया संस्थानों को निर्देश दिया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान वाले दिन और उससे एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी निर्वाचन कार्यालय से लेना अनिवार्य है। मीडिया संस्थानों को लिखे पत्र में निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि सभी राजनीतिक विज्ञापन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की नियमावली के अनुसार होने चाहिए।
And talking about Bengaluru, the Indian Society of Human Genetics, ISHG, annual meeting and international conclave on neurogenetics was held in NIMHANS, Bengaluru yesterday. Speaking as the chief guest at the conclave, the member of Niti Aayog, Dr. V.K. Paul, lauded India's second CAR-T cell therapy for B-cell non-Hodgkin lymphoma and the groundbreaking lentiviral gene therapy research for hemophilia A at CMC Vellore by Dr. Alok Srivastav. He announced the availability of the life-saving drugs for thalassemia, Gaucher's disease, Wilson's disease and sickle cell disease in children. He noted that over 40 million individuals have been screened for sickle cell anemia. He informed that India aims to transform healthcare and leave no one behind through Viksit Bharat 2047. He added that India's genetic research is positioning us as global leaders.
अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी के बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह के बाद ठाणे पुलिस अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर अपनी कार्रवाई तेज करने जा रही है। पुलिस ने अब तक 5 क्षेत्रों ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर और वागले एस्टेट से 25 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ठाणे अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने बताया कि अभियान को तेज करने के लिए पुलिसकर्मी निर्माण स्थलों और श्रमिक कॉलोनियों में तलाशी अभियान चलाएंगे।
तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अलोक आराधे हैज बिड फेयरवेल फॉलोइंग हिज अपॉइंटमेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। द अपॉइंटमेंट वाज रिसेंटली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Addressing the court gathering consisting of all the judges of the High Court, state government and central government advocates, officer bearers of the Telangana High Court Advocate Association, among others, Justice Aradhe thanked all stakeholders for their unwavering support in performing his duties. He expressed a sense of pride in heading the youngest High Court in the country with a maximum number of women judges. The initiatives taken up during Justice Aradhe's tenure include the introduction of a hybrid court and laying the foundation stone for the new High Court building in Hyderabad. Justice Aradhe was appreciated for the faster disposal rate of cases at about 103% in proportion to the cases filed.
आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को कोलकाता के सियालदा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है, लेकिन अदालत ने कहा कि यह दुर्लभतम घटना नहीं है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। अदालत के बाहर आम लोगों की भारी भीड़ थी। अदालत ने पिछले सप्ताह शनिवार को संजय रॉय को दोषी ठहराया था। पिछले साल 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से प्रशिक्षु डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। संजय रॉय को 10 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने मामले में संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पिछले साल 8 और 9 अगस्त की रात को प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता की बात करें तो सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम की खबरें जानते हैं अनिता आनंद से।
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। In Bengaluru, fog or mist would occur in early morning. The minimum temperature was 17 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जिक्र का। आज 21 जनवरी है।
Yeah, in the year 1789, the first American novel, The Power of Sympathy or The Triumph of Nature, founded in truth by William Hill Brown, was printed in Boston.
आज ही के दिन 1924 में रेक्स जे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। और आज ही के दिन ग्रीस को स्वतंत्रता मिली। और आज ही के दिन व्लादिमीर लेनिन का निधन हुआ।
In 1954, the first nuclear-powered submarine, the USS Nautilus, was launched on the Thames River in Connecticut.
आज ही के दिन 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया था।
And in the year 1972, the northeastern region of India, comprising Manipur, Meghalaya, and Tripura, became separate states of the Indian Union.
आज ही के दिन 1981 में तेहरान में अमरीकी दूतावास में बंधक बनाए गए सभी लोगों को छुड़ाया गया था।
इन द ईयर 1976 द फर्स्ट कमर्शियल कॉनकॉर्ड फ्लाइट जेनरेटिंग अ सोनिक बूम एज इट ट्रेवल थ्रू द एटमोस्फियर एट सुपरसोनिक स्पीड द कॉनकॉर्ड अ कमर्शियल एयरक्राफ्ट बिल्ट विद फंडिंग फ्रॉम द ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट्स बिगैन रेगुलर सर्विस ऑन दिस डे इन द ईयर दैट इज 1976।
2008 में आज ही के दिन भारत ने इसराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया।
एंड नाउ वी रिमेम्बर पीपल हु वर बॉर्न दिस डे और हु पास्ड अवे टुडे एंड इन दिस सेगमेंट वी रिमेम्बर ग्रिगोरी रास्पुटिन हु वाज बॉर्न ऑन दिस डे हुज बर्थ एनिवर्सरी इज टुडे। बॉर्न ऑन दिस डे इन 1869 ही वाज अ रशियन मिस्टिक एंड फेथ हीलर। He's best known for having befriended the imperial family of Nicholas II, the last emperor of Russia, through whom he gained considerable influence in the final years of Russian Empire. Rasputin was born to a family of peasants in Siberian village of near the Tumensky Uzed in Tobolsk Governorate, present-day Yarkovsky district in Oblast. He had a religious conversion experience after embarking on a pilgrimage to a monastery in the year 1897 and has been described as a monk or a stranik or wanderer or pilgrim, though he held no official position in the Russian Orthodox Church. In 1903 or in the winter of 1904 or 5, he travelled to St. Petersburg and captivated a number of religious and social leaders, eventually becoming a prominent figure in Russian society. In November of 1905, Rasputin met Nicholas II and his Empress consort Alexandra Fyodorovna.
आज पुण्यतिथि है क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की। वे प्रख्यात वकील और शिक्षाविद थे। रास बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति तथा स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें श्री रास बिहारी बोस का नाम प्रमुख है। रास बिहारी बोस कांग्रेस के उदारवादी दल से संबद्ध थे। रास बिहारी बोस ने उग्रवादियों को घातक, जनोत्तेजक तथा अनुत्तरदायी आंदोलनकारी कहा। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहते थे। 1937 में उन्होंने भारतीय कीर्तन संघ की स्थापना की और सभी भारतीयों का आह्वान किया तथा भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया.
And today is the birth anniversary of Cristobal Balenciaga. Born on this day in 1895, was the Spanish fashion designer and founder of the Balenciaga clothing brand. He had a reputation as a couturier of uncompromising standards and was referred to as the master of us all by Christian Dior and as the only couturier in the truest sense of the word by Coco Chanel, who continued, "The others are simply fashion designers." On the day of his death in 1972, Women's Wear Daily ran the headline, "The King is Dead."
आज जन्म दिवस है पंडित नरसिंहलू वाडवती का. उनका जन्म वाडवती नामक गांव में 21 जनवरी 1942 को हुआ था. वे प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञ हैं. पंडित नरसिंहलू वाडवती का जन्म बचपन से ही वे संगीत में नरसिंहलू वाडवती की विशेष रुचि थी. वर्षों के परिश्रम के बाद पंडित नरसिंहलू वाडवती ने क्लैरियोनेट पर महारत हासिल की. लगभग एक व्यक्ति के गाने के धुन की तरह क्लैरियोनेट से गवाने की अनूठी विधा उन्होंने हासिल की. उन्होंने भारत, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में अपनी प्रस्तुति दी. मटमारी वीरण्णा इनके प्रथम गुरु थे. बाद में इन्होंने अपना संगीत अभ्यास श्री वेंकटप्पा के यहां पूर्ण किया. पंडित नरसिंहलू वाडवती ने पंडित सिद्धराम जंबल दिन्नी से हिंदुस्तानी संगीत में शिक्षा ली. 10 साल की कठोर साधना के बाद पंडित नरसिंहलू वाडवती ने एकल गायन शुरू किया था. भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस 21 जनवरी को कलाकार दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया है.
Today is also the death anniversary of Terence Graham Parry Jones. He passed away in 2020. The Welsh actor, comedian, director, popular historian, writer and member of the Monty Python comedy troupe. Jones co-created, he made his directorial debut with Monty Python and the Holy Grail, which he co-directed with Gilliam, and also directed the subsequent Python films Life of Brian and The Meaning of Life. Jones co-created and co-wrote with Palin the anthology series Ripping Yarns. He also wrote an early draft of the Jim Henson's film Labyrinth and is credited with the screenplay, though little of his work actually remained in the final cut. He was a well-respected medieval historian, having written or co-written several books and presented television documentaries about the period, as well as prolific children's author.
आज जन्म दिवस है दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का. वे भारतीय फिल्म अभिनेता, थिएटर और टीवी कलाकार थे. उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक में काम किया, लेकिन उनको पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली. इसके बाद उन्होंने फिल्मों के प्रस्ताव उन्हें मिलने शुरू हुए. उनकी पहली फिल्म काय पोछे थी, जिसमें उनके अभिनय की काफी तारीफ भी हुई. काय पोछे के बाद सुशांत सिंह राजपूत शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे. फिल्म सफल रही और सुशांत का फिल्मी करियर परवान चढ़ गया. 2016 में आई प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की आत्मकथा एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी.
सर, कुड यू हेल्प मी विद योर नेम प्लीज?
सॉरी
सर, योर नेम?
महेंद्र सिंह धोनी.
सर, योर रूम नंबर?
601.
राइट. कुड आई हैव सम आईडी प्लीज?
आई डोंट हैव एनी आईडी एक्चुअली सर. माय रूम एंड I have locked myself out.
Sorry, sir. I need to see some ID.
Sakshi, right?
Yes, sir.
Sakshi, tell me one thing. Why will I pretend to be Mahendra Singh Dhoni?
I don't know, sir. It's actually I'm interning with this hotel, and this is what we've been instructed to do.
He, Sushant Singh, received his Screen Award and was nominated for the Filmfare Awards on 3 occasions. He appeared on the Forbes India Celebrity List of 100 twice since 2017.
तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह. मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला. तेरे रास्ते पे मैं तो
और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है। अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।